ओम शांति। तो आज मंजू बहन जी ने कहा है कि लेटर टू गॉड है ना और फ्रॉम गॉड, दोनों ना, लेटर फ्रॉम गॉड ये करवाना है केवल। और एक बात है, जैसे हम सभी क्या मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, बाबा की याद निरंतर बनी रहे, है ना, बाबा की याद टूटे नहीं। और दूसरी तरफ है, जैसे हम बाबा को याद करना चाहते हैं, ऐसे ही बाबा भी किसे याद करते हैं, बच्चों को याद करते हैं। और एक महीने के अंदर ही है ये मुरली, जिसमें बाबा ने कहा था कि जो बच्चे बाबा की सेवा करते हैं, जो बच्चे बाबा की सेवा करते हैं, है ना, सेवा में बिजी रहते हैं, तो वो अवश्य किसके मददगार हैं, बाबा के, तो बाबा भी उन्हें याद करते हैं, है ना। इसी प्रकार यदि हमारा स्वभाव बहुत सरल है, शांत है, बहुत मीठा है, तो इससे अनेकों को सुख मिलता है। और बाबा इस सृष्टि पर आए ही हैं सुख देने, तो यदि आप किसी भी रीति से किसी को सुख देते हैं तो ये ईश्वरीय सेवा ही हो गई। और फिर बाबा याद करते हैं ऐसे बच्चों को, खींच होती है, आपको लगेगा हाँ बाबा मुझे खींच रहा है। एक होता है हम मेहनत करते हैं, दूसरी तरफ बाबा खींच रहा है ऐसा लगता है। तो इसलिए यदि हम इतना सरल स्वभाव, इतना स्वीट बना लेते हैं, तो पुरुषार्थ का अर्थ ही है तीव्र पुरुषार्थ। अर्थात ऐसा नहीं है कि तीव्र पुरुषार्थ अर्थात जल्दी जल्दी, नहीं, जल्दी जल्दी नहीं, रिलैक्स। जितना हमारा पुरुषार्थ फास्ट होगा ना, उतना ही हम रिलैक्स भी होते जाएंगे, साथ में पेशेंस। कोई भी बात है और उसमें आप पेशेंस से करते हैं तो लोग समझते हैं हाँ इनके पास मैच्योरिटी है, घबराते नहीं हैं। तो पुरुषार्थ अर्थात पहली आवश्यकता पेशेंस, धीरज, है ना, पहली आवश्यकता है। कहते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति का पहला लक्षण ही है पेशेंस। यदि पेशेंस नहीं है तो वो क्या होगा, हर जगह उनके द्वारा लोगों को फिर दुख मिलेगा। इसलिए पेशेंस बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, जब हम किसी से मिलते हैं, मान लीजिए कोई मिलते हैं बाहर दुनिया में भी, शेक हैंड करते हैं, हाथ हिलाते हैं, हाथ से मिलते हैं, हाथों से अभिवादन करते हैं, लेकिन जो आत्मा है, जब ये बाबा से मिलेगी तो कैसे मिलेगी? आत्मा का हाथ कौन सा हाथ है, कौन सा हाथ है आत्मा के पास, कौन बताएगा? बुद्धि रूपी हाथ है ना। आत्मा के पास क्या है? बुद्धि रूपी हाथ। तो बुद्धि के द्वारा ही आत्मा किसी से मिलती है, किसी से सुनती है, है ना। अब जैसे आप यहाँ हैं और आपको अभी लौकिक घर में किसी कारण बस बात करना है, कैसे बात करेंगे? मोबाइल चाहिए ना, मोबाइल लेंगे फिर आप बात करेंगे, तो माध्यम क्या हो गया? मोबाइल, है ना, टेलीफोन। तो ऐसे ही बाबा से जब हमें बातें करनी है, तो बाबा से बात करना है, बाबा से मिलना है, तो इसके लिए कौन सा मोबाइल चाहिए? कोई मोबाइल है? बाबा से कैसे मिलें, कैसे जुड़ेंगे बाबा से? मन और बुद्धि से, है ना? मन हमारा जितना शांत होगा ना, इतना हम बाबा की बातों को कैच कर सकेंगे। बाबा हमें क्या इशारा दे रहे हैं, जब हमारा मन शांत होगा तभी कैच करेंगे। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो बच्चे 8 घंटा मुझे याद करते हैं ना, वो साक्षात मेरे जैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि इतना शांत हो जाते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंट, कहीं भी कुछ आवाज होती है कैच कर लेते हैं। तो हमें बाबा से कैसे मिलना है? मन बुद्धि के द्वारा। तो इसलिए हमें अपने मन बुद्धि को भी कैसा बनाना है? प्योर, है ना? क्योंकि बाबा जो है पवित्रता का सागर है, और हमारे मन में, हमारी बुद्धि में यदि इम्प्योरिटी है तो हम बाबा से कैसे मिल सकते हैं? जैसे हम कुछ सफाई भी करने जाते हैं, हमने कुछ क्लीन किया तो लास्ट में हाथ को क्या करते हैं? वॉश करते हैं ना। तो इतना हमें मन बुद्धि को भी अपना इतना प्योर रखना है, क्योंकि अगर अशुद्धि हमने टच किया मन बुद्धि से, तो हमें फिर मन बुद्धि को भी वॉश करना पड़ेगा। किससे वास करना है? किससे क्लीन होगी मन बुद्धि? बाबा की याद से। इसीलिए बाबा ने एक मुरली में कहा है कि जब बाबा देखते हैं ना बच्चों को, कि ये बच्चे से कोई गलती होने जा रही है, कोई भूल होने जा रही है, तो बाबा को इतने तरस आता है ना, कि बाबा कोशिश करते हैं, बाबा ने कहा कि कोशिश करते हैं ये बच्चे से गलती ना हो। लेकिन बाबा अव्यक्त है ना, और हम स्थूल में हैं, तो बाबा को वर्क करने में 10-15 मिनट लग जाते हैं, ये बाबा ने मुरली में कहा। और जब तक बाबा सफल हो तब तक वो बच्चों से कई बार भूल हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे कभी भी आपसे कोई भूल होनी होती है ना, तो भले आप गलती करने जा रहे हैं लेकिन लगेगा कुछ खींच रहा है, कुछ गलती है। ये जो बाबा आपके लिए मेहनत कर रहा है ना, वो वाइब्रेशंस है जो बाबा के आपके लिए तड़प है, रहम है कि बचा लूँ बच्चे को ना, वो वाइब्रेशन काम कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ गलती भी होने जा रही है ना, आप 15-10 मिनट ठहर जाओ, बच जाएंगे गलती से, क्योंकि बाबा कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमें अपने मन बुद्धि को बहुत प्योर बनाना है, क्योंकि इसका आधार ही है हमारे इस पुरुषार्थी जीवन का आधार ही क्या है? मन बुद्धि। हर कार्य ही किसे करना है? मन और बुद्धि से। तो इसलिए इतना ध्यान दें कि हमारा मन और बुद्धि क्लीन कैसे होता है और गंदा कैसे होता है, ये भी समझना। तो इसीलिए जो आज हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, आज जस्ट एक एग्जाम्पल है, लेकिन इसको बार बार आपको खुद ही इसको प्रैक्टिस करना है। क्या है कि जब हम, है ना, किसी से भी आप किसी से भी हम किसी से संबंध ठीक करना चाहते हैं, मान लो कोई हमसे नाराज है, कोई हमसे नाराज है, तो हम क्या करते हैं? पहले उनको हम बातों से मनाते हैं, वो भी पता नहीं सुनने को तैयार होगा कि नहीं होगा, तो हम बातों से कि ऐसी बात है, ऐसी बात है, ये कारण था, इस कारण हमने ऐसे बोला, आपने कुछ इसका तो बातों से क्लियर करते हैं ना किसी को, लेकिन हम बात से क्लियर कर रहे हैं लेकिन आपका भाव क्या है, अंतर हो जाता ना भाव में भी कैसा। तो ये जो क्लियर करते हैं ना बातों से, तो यही विधि बाबा हम सबको बताते हैं कि जो हम बातों से क्लियर करते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो आपसे सेटिस्फाई हो जाए। बाबा ने क्या विधि बताई है? बाबा ने कहा जैसे मान लो आपका कोई रिलेशन है, आपका लौकिक पिता है, पति है, भाई है, कोई भी आपसे नाराज है या आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या करो? बाबा ने क्या विधि बताई है? बाबा ने कहा जिस रिलेशन में आपको तकलीफ है ना, उसी रिलेशन से किसको याद करो? बाबा को याद करो, है ना। जैसे कहते हैं कोई वृक्ष है तो एक एक पत्ते को पानी थोड़ा डालेंगे, पानी कहाँ डालेंगे? बीज में, जड़ में, बीज में डालेंगे, वहाँ डालेंगे पानी, स्वतः सब जगह मिल जाएगा। तो ऐसे इस दुनिया में आप एक एक को मनाएंगे ना, कितने को मना पाएंगे? और रूठने वाले की भी नेचर होती है ना, आज रूठेगा कल रूठेगा, वो रूठता ही रहेगा, आप मनाते रहो। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि आप जिस भी रिलेशन में तकलीफ है या किसी को मनाना चाहते हैं ना, तो आप बाबा को बोलो, बाबा को मनाओ। मान लो आपका पति है, पति नाराज है, तो बाबा को पति बोलो, बाबा मेरा पति है, पति समझ करके बाबा से स्नेह प्यार। तो जो बाबा से आप प्यार करते हैं, बाबा से प्यार करते हैं, तो बाबा वो प्यार फिर रख लेते हैं ना अपने पास, लौटा देते हैं आपको, ले लो अपना प्यार। क्या करते हैं बाबा? बाबा कहते हैं कि आप जब प्यार देते हैं ना, तो बाबा उसका हजारों गुना करके जिस आत्मा को देना है वहां पहुंचा देता है बाबा। तो मान लो यदि पति के संबंध से, मित्र के संबंध से, किसी भी संबंध से आपने बाबा को याद किया ना, तो जो आपका वो रिलेशन है उसमें ताकत भर जाती है। और हम गलती क्या करते हैं? हम एक एक को मनाने लगते हैं, एक एक को मनाने लगते हैं, ये हमारी गलती हो जाती है। फिर हमारी एनर्जी इसी में अटकी रह जाती है, हम बाबा को कब याद करेंगे? तो मनाना छोड़ करके हमें क्या करना है? बाबा की मानना है, बाबा हमें क्या कहता है वो मानना है। और मनाना किसको है? बाबा को। हमें सारी कोशिश करना है हमें बाबा को सेटिस्फाइड करना, बाबा को मनाओ किसी भी बात में। आपको एक एक के पास नहीं जाना पड़ेगा, हम एक एक आत्माओं के पास जाते हैं, मान जाओ। जबकि आप कितनी बड़ी हस्ती हैं, कितनी बड़ी, स्वयं भगवान आपके लिए आ गए हैं। बाबा कहते हैं आप हमारे सिर के ताज हैं, हमारे नैनों के नूर हैं। भगवान इतना प्यार कर रहा है, तो उस प्यार को लेने को हमें फुर्सत नहीं है। भगवान इतना प्यार कर रहा है लेकिन हम वो प्यार ले ही नहीं रहे, हम तो और कोई रूठे हैं उसको मनाना चाह रहे हैं। हम बाबा में इतना बिजी हो जाएं कि और कहीं देखने की फुर्सत ही ना हो। क्या क्या चीज चाहिए आपको जो नहीं मिल रहा है बाबा? आत्माओं से पूरा कल्प ही आपने प्यार किया, एक यही समय है जब हम डायरेक्ट भगवान से प्यार करते हैं। तब एक एक को मनाना छोड़ना है, डोंट केयर भी नहीं करना है, हर एक को रिस्पेक्ट भी देना है, पूरा ही रिस्पेक्ट देना है। ये किससे सीखा हमने रिस्पेक्ट देना है? किससे सीखा हम लोगों ने? बाबा से। सारे यूनिवर्स की सबसे बड़ी अथॉरिटी, और कितना रिस्पेक्ट देता है कि मेरे सिर के ताज हो आप। बाबा ने देखा हमें, हम कैसे हैं, फिर भी इतना रिस्पेक्ट देता है। तो ये चीज़ हमें सीखना है। इसीलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ का सारी क्या है, बाप समान बनो। तब यहाँ ये देखना है क्या हम भी बाबा जैसा हर एक को रिस्पेक्ट देते हैं, कि किसी ने हमारी इंसल्ट कर दिया तो हमने भी इंसल्ट कर दिया। तो ये है एफर्ट, कंपेयर करना बाबा से, बाबा कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, बाबा कैसे हर एक को निस्वार्थ प्यार करते हैं। ये है पुरुषार्थ। जब आप ऐसा करेंगे तो इतना स्वीट बन जाएंगे, याद की मेहनत ही नहीं है, है ना। तो इसीलिए जैसे आपने मोबाइल यूज किया, बातों को यूज किया, ये सेकंड क्वालिटी हो गई बात, दृष्टि, दृष्टि से भी बड़ा संकल्प। पहला है संकल्प। अगर कोई आपसे नाराज भी है ना, आप बात नहीं करके उसके लिए संकल्पों से आप स्नेह रचते हैं, संकल्पों से स्नेह के वाइब्रेशंस देते हैं, ये ज़्यादा वर्क करेगा, आपके रिलेशन ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि सबसे पावरफुल है मनसा, और ये मनसा जब बाबा की याद में रहती है तो सुप्रीम पावर हो गई। तो इसलिए हमें इतना ये समझना है कि बाबा की याद का साधन हमें मिला हुआ है, और इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप मन मनाभव का जो मंत्र है ना, इसी को यंत्र बना दो, इसी से हर काम करो, बाबा की याद से हर काम करो, कहीं भी सफल होंगे, है ना। तो जैसे हम मोबाइल से जब किसी से बात करते हैं तो मोबाइल माध्यम हो गया, अभी हमें भगवान से बात करनी है, बाबा से बात करनी है, तो हमारे पास मोबाइल तो नहीं है ना, किससे बात करेंगे, मन से, है ना, मन और बुद्धि से बाबा से बात करेंगे। लेकिन मन बुद्धि इतनी प्योर होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होता है, आपके मन बुद्धि में मिक्सचर है ना, तो उसका आंसर भी ऐसे मिक्सचर वाला मिलेगा, है ना। तो इसीलिए ये जो आज हम करेंगे, ये केवल आज नहीं, आप रोज 15 मिनट 20 मिनट निकाल के दिन में इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एक दिन दो दिन तीन दिन करते करते ना, एक महीने में ना आपको मास्टरी आ जाएगी, आपको खुद फील होगा कि हमने कल जो कैच किया कैसा रहा। तो आप देखेंगे इसमें आपकी ना एकदम निपुण होते जाएंगे। करना क्या इसके लिए, पहली बात तो हम आत्मा समझें, आत्मा समझ कर बैठे, क्योंकि अगर हम आत्मा हैं तो ही बाबा से कनेक्ट होंगे, अगर अदरवाइज हम किसी देहधारी में अटक जाएंगे। तो पहला रिक्वायरमेंट ही है कि हम आत्मा समझें, आत्मा के प्रैक्टिस, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि यदि आप अपने को आत्मा समझते हैं ना, तो बाबा स्वतः याद आता है। देह समझेंगे, देहधारी, मामा चाचा नाना सब याद आएंगे। तो मेहनत ही नहीं, मेहनत यही है केवल आत्मा समझें। तो इसीलिए जब हम प्योर बन जाते हैं, हमारी आत्मा प्योर होती है ना, तो प्योर आत्मा का कनेक्शन प्योर से हो जाता है ना बाबा से, जो भी हम बात करते हैं बाबा से। उसका आंसर भी मिलता है हमें। तो कितने भाई बहने हैं जिनके पास अपनी खुद नोटबुक है, तो जिसके पास भी नोटबुक है आप खुद महसूस करिए, खुद ही देखिए आपको कि आपके पुरुषार्थी जीवन में या किसी भी प्रकार की लाइफ में यदि कोई समस्या है तो क्या समस्या है आपकी। समस्या अनेक प्रकार की होती है ना? समस्या भी हर एक आत्मा की ना, समस्या से भी पता चलता है कि इस आत्मा की क्वालिटी क्या है। क्योंकि कहते हैं ना कि सही प्रश्न उत्पन्न होना, किसी को सही क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा है ना, तो कहते हैं कि सही क्वेश्चन उत्पन्न होना अर्थात आधा उत्तर अपने आप मिल जाता है। कुछ लोगों के प्रश्न ऐसे उठते हैं जो और ही डाउट बढ़ा देता है। तो इसीलिए हमको यही सीखना है रोज, ये करते करते आपकी मास्टरी आ जाएगी इसमें। तो पहले क्या करें, 10 मिनट, 10 मिनट आप अपने अंदर देखिए कि हमारी क्या समस्या है, हमारा पुरुषार्थ आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, क्या कमजोरी है। अनेक प्रकार के क्वेश्चन है, लेकिन आवश्यक क्वेश्चन क्या है। तो 10 मिनट पहले बैठ जाएं बाबा की याद में और अपने को देखें कि मेरी समस्या क्या है, कहाँ मैं रुक जाता हूँ, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो ये लेटर हमें बाबा को लिखना है। जब अपने को 10 मिनट देखें तो बाबा को, हम बाबा की याद में रह के बाबा को लिखें कि बाबा मेरा अमृत बेला मिस हो जाता है, मैं मुरली पूरे ध्यान से नहीं सुन पाती हूँ, मेरी बुद्धि भटक जाती है, या मुझे क्रोध आ जाता है। जो भी प्रश्न है आपका, 10 मिनट पहले खुद आप बैठ के देखेंगे तो पाएंगे कि क्या मेरी समस्या, क्या प्रश्न है। फिर जब 10 मिनट बाबा की याद में रहकर वो प्रश्न लिखना है, ठीक है, तो पहले बाबा की याद में रह करके आप प्रश्न लिखेंगे, फिर 10 मिनट बाद हम आपको बताएंगे कैसे बाबा की याद में रह के फिर बाबा से क्या आंसर मिल रहा है वो बाद में लिखना है, ठीक है। तो अभी 10 मिनट, 10 या 15 मिनट बाबा की याद में स्थित हो जाएं और अपने को भी देखें कि हमारे अंदर क्या कमी है, किसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, फिर उसको लिखेंगे, ठीक है। तो अभी 10-15 मिनट अच्छी तरह से बाबा की याद में स्थित हो जाए। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं, डायरी आदि नहीं लिखे हैं, तो प्रश्न तो याद रह सकता है ना, तो अगर नहीं लिख सकते हैं तो भी आप बाद में बता सकते हैं, ठीक है। तो पहले प्रश्न लिख लीजिए अपना, पहले ही प्रश्न नहीं लिखे, थोड़ा देर अपने को देख लीजिए, चेक कर लीजिए, फिर लिखिए। केवल प्रश्न के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन प्रश्न लिखते समय सामने बाबा को देखना है, बाबा को संबोधित करते हुए कि बाबा मेरी ये समस्या है, बाबा पहले हो समस्या बाद में। अभी कितने लोगों का हो गया प्रश्न, किसने लिख लिया प्रश्न, हाथ उठाएंगे किसका, 1, 2, 3, 4, 5 और इधर किसी ने प्रश्न लिखा, 6, 7 और किसने लिखा, 8 हो सकता है। प्रश्न में अच्छा भी होता है, हमारा 8 घंटा योग कैसे हो, 8 घंटा योग नहीं होता है, ज्वालामुखी योग नहीं कर पाते हैं, या कई बार छोटा सा प्रश्न होता है लेकिन उससे बहुत बड़ी बड़ी बातें रुक जाती है। ये नहीं सोचना चाहिए, कोई भी प्रश्न छोटा नहीं होता है, छोटा सा भी प्रश्न हम सॉल्व करते हैं ना तो रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। और देखिए कोई प्रश्न लिख सकते हैं, 2 मिनट और है, 1-2 मिनट और है, कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है प्रश्न। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोगों ने लिखा। तो जैसे आपने बाबा को आगे रख करके प्रश्न लिखा कि बाबा मेरी ये समस्या है, मैं यहाँ रुक जाता हूँ, तो अभी फिर से बाबा की याद में स्थित होंगे और फील करेंगे, कैच करना है कि बाबा इसका क्या आंसर दे रहे हैं। तो सबसे अच्छी विधि तो है कि मुरली में हम मुरली से आंसर देखें, लेकिन इसमें भी बाबा कहते हैं कि कई बार मुरली में बाबा ने किस हिसाब से क्या सिचुएशन थी, क्या परिस्थिति थी, उसके हिसाब से आंसर दिया है। तो ये भी हमें समझना होता है। दूसरी बात, जहाँ तक कैचिंग की बात है, अभी जैसे हम कैच करेंगे कि बाबा हमें क्या उत्तर दे रहे हैं, क्या रिप्लाई कर रहे हैं, इसे कैच करना है। तो ये नहीं कि बाबा ने हमको ये रिप्लाई दे दिया, हमने कैच कर लिया, नहीं, उसको भी वेरीफाई कराना। हमारे पास कोई बड़े भाई बहने हैं, हमारे टीचर हैं, कोई बड़े हैं, उनको बता सकते हैं कि हमने ये प्रश्न लिखा, बाबा ने मुझे ये टच किया, ये टच कराया, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं बाबा ने हमें करा दिया, क्योंकि हमारी बुद्धि एकदम ना क्या कहेंगे, एकदम कंप्लीट नहीं है ना, कुछ न कुछ मिक्सचरिटी है, तो इसलिए कुछ न कुछ मिक्सचर भी आ सकता है। इसीलिए हम जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, आज बाबा ने क्या रिप्लाई किया, उसका आंसर क्या रहा, कल फिर परसों, करते करते 1 महीने में ना आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे आंसर मिलने लगा है। 1 दिन में नहीं हो जाएगा, ये तो एक केवल एक विधि है शॉर्ट प्रैक्टिस के लिए। तो फिर क्या है, आपको किसी के पास भटक के जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अवेलेबल है हर समय बाबा, है ना। बाबा इसलिए कहते हैं ना, आपकी जो भी बातें हैं मुझे दे दो। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि आप कि सोचने का काम भी मैं करता हूँ। बाबा ने एक मुरली में कहा कि बच्चे अगर चलो आप बाबा की याद में रह करके सेवा भी नहीं कर सकते, तो बाबा कहते हैं कि आओ और मेरे पास बिंदु बनकर बैठ जाओ। और बाबा ने कहा वाइब्रेशंस दो। अगर ये भी नहीं कर सकते, तो बाबा ने कहा बैठना भी नहीं आता क्या, बैठ तो सकते हो, है ना। तो इसीलिए भी 5-10 मिनट हम और बाबा की याद में स्थित होंगे और फील करेंगे कि जो हमने प्रश्न लिखा उसका बाबा क्या हमें रिप्लाई कर रहे हैं। तो जो बाबा हमें रिप्लाई कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, उसे फिर से लिखना है, ठीक है। तो 10 मिनट बाबा की याद में स्थित हो जाएं और फिर से बाबा ने क्या हमें बताया है उसे लिखें फिर से। तो बाबा कहते हैं कई बार ये शरीर भी छूट जाए, है ना, शरीर भी छूट जाए, लेकिन क्या नहीं छूटे, शरीर भी छूट जाए लेकिन क्या नहीं छूटना चाहिए, खुशी, खुशी नहीं जानी चाहिए, है ना, सब कुछ चला जाए लेकिन क्या नहीं जाए, खुशी नहीं जाए। इसीलिए बाबा ने एक मुरली में कहा कि जो कुछ होना था मान लो हो गया, आप उसमें कुछ परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, अब हो गया तो क्या करो। बाबा ने कहा आप कुछ नहीं कर सकते हो, अब उसका जो परिणाम है वो मुझे मिलना ही है, तो भी क्या करो। बाबा ने कहा क्या करो, मुस्कराओ। क्या करो, मुस्कराओ, क्योंकि हंसना भी, लाफिंग जो आजकल कहते हैं ना लाफिंग थेरापी, जोर जोर से हंसो, उसमें क्या होता है थोड़े देर तक आप कर सकते हैं लेकिन मुस्कराना हमेशा हो सकता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि यदि हम मुस्कराते हैं ना, जैसे मान लो कोई फोटो खींच रहा आपका और उस समय मुस्कराते हैं, तो थोड़ा सा मुस्कराना आपके फोटो को क्या करते हैं, हमेशा के लिए अच्छा बना देता है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि यदि आप थोड़े देर मुस्कराते हैं तो आपका फोटो इतना अच्छा हो जाता है, तो यदि हमेशा मुस्कराएंगे तो कैसा हो जाएगा। तो मुस्करा तो हमेशा सकते हैं ना। तो इसीलिए हमें प्रश्न कॉन्शियस नहीं होना है, प्रश्न भी है तो मुस्कराते। तो कौन बताएगा अपना प्रश्न उत्तर, कोई बता सकता है, कौन बताएगा, हाथ उठाइए, आ जाइए यहाँ, माइक रखा है यहाँ।
ओम शांति। मेरा प्रश्न है, प्रिय बाबा मेरी अमृत वेला ज्वालामुखी क्यों नहीं होती। तब जो आपने कहा कि थोड़ा चिंतन मंथन करो, तो मुझे ऐसी भासना हुई कि मैं प्यार से याद कम करती हूँ, उसके बाद दिन भर में जो होता है कि ट्रैफिक कंट्रोल, भूख लगाना, नुमाशाम योग, बाबा को खत लिखना, सम्मान लिखना या सम्मान में रहना, और शांति से, या जैसे आपने अभी कहा कि मुस्कुराते हुए या फिर भी थोड़े शांति से रहना, बातें करना, ये सब मुझसे रेगुलर नहीं होता है, तब कभी कभी ही अमृत वेला अच्छी होती है।
बहुत बढ़िया, ये भी ठीक है मनन चिंतन, लेकिन ये भी सीखना है, जैसे आप डेली एक प्रश्न लिखिए बाबा को, जैसे आज आपने लिखा ना, तो ऐसे रोज एक बार दिन में टाइम निकाल के, समय निकाल के 10 मिनट बाबा को लिखिए, और फिर कैच करिए कि बाबा अभी क्या रिप्लाई कर रहे हैं। हमारा मनन चिंतन में नहीं, एक मनन चिंतन सेकंड स्टेप है।
अच्छा,
मनन चिंतन वो तो ठीक है, वो भी करना है, लेकिन ये जो लेटर राइटिंग है ना, जब हम बाबा को लेटर लिख रहे हैं, तो जैसे मैंने लिखा कि मेरा ज्वालामुखी योग क्यों नहीं इतना अच्छा रहता, तो जैसे ये हम बाबा को आगे रख के लिखने के, बाबा बाबा है ना, तो प्रश्न कॉन्शियस नहीं है, हमारा प्यार किससे झलक रहा है, बाबा से, बाबा क्यों नहीं, तो फील करें कि बाबा के आंसर दे रहे हैं, तो बाबा करें कि बच्चे तुम्हारा ये, इसको फील करना है कि बच्चे बाबा रिप्लाई कर रहे हैं, बाबा आंसर दे रहे हैं, तो ये हमें रोज प्रैक्टिस करना है, तो फिर धीरे धीरे ना आपको खुद ही महसूस होगा कि इसमें इस मास्टरी आती जाएगी, आप फिर बाबा को कैच करने लगेंगे, आपको लगेगा हाँ अब मैं कैच कर रही हूँ बाबा की बातें।
जैसे आपने अभी कहा कि 10-15 मिनट रुकना,
जी जी हाँ, तो 10 मिनट वो करके क्वेश्चन लिखना है बाबा को आगे रख के, बाबा आगे है और लिख रहे हैं, बाबा को पहले देखें, प्रश्न बाद की बात है, ऐसा नहीं प्रश्न हमारा बड़ा हो जाए बाबा छोटा हो जाए, नहीं, फर्स्ट हमें कौन है, बाबा। बहुत अच्छा आपने आंसर लिखा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इन्होंने। और कोई किसी को अगर ऐसा लगता है कि हमारा प्रश्न बताने लायक नहीं है, और पता नहीं हम बताएंगे तो हमारा इंसल्ट ना हो जाए, तो धीरे से आके कान में कह सकते हैं, ठीक है।
ओम शांति।
ओम
सबसे पहले तो मैं इस पर धन्यवाद कहता हूँ, इस परम पिता परमात्मा का सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमें इस भट्टी का अवसर मिला, और इस भट्टी में हमको आज तक जो कुछ नहीं सीखने को मिला, तो इस भट्टी में हमें उस सीखने को मिला, इसलिए मैं बाबा को धन्यवाद करता हूँ कि हमें इसका अवसर मिला। अब जब मेरा प्रश्न ये है बाबा से का कि मेरा जो अमृत वेला है वो कभी कभी बहुत मिस होता है, तो इसलिए मैंने बाबा को कह दिया और 10 मिनट सोचने के बाद मुझे ऐसा टचिंग हुआ कि बाबा कहता है बच्चे सोने से पहले एक मुरली अच्छे से पढ़ के और मुझे गुड नाइट करके और मेरे गोद में सो जाना, तो अपना अमृत वेला कभी मिस नहीं होगा, मैं आपको जगाऊंगा, या ऐसा बाबा का मुझे टच हुआ। ओम शांति।
बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
ओम शांति। मैं बुल्ढाना से गणेश भाई हूँ। अभी मधुबन आने के पहले हमने सोचा कि बहुत दिन के बाद जा रहे हैं, तो उस अवस्था से अमृत वेला योग वगैरह चालू करते हैं। शाम को भी नुमा शाम योग वगैरह, और दिन में भी जब भी समय मिले ट्रैफिक कंट्रोल योग वगैरह करता रहा हूँ, क्योंकि मधुबन जाने लायक अवस्था होनी चाहिए अपनी। अभी आपने जो बताया कि कुछ प्रश्न हो तो बताओ, तो मन में एक प्रश्न आया कि पहले से योग तो अभी अच्छा हो रहा है, लेकिन कभी कभी जो एकरस अवस्था है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, या रस थोड़ा कम हो जाता है, रसहीनता नहीं आती लेकिन थोड़ा एकरसता कम हो जाती है। बाद में आपने बताया और योग में रहो 10 मिनट, तो मुझे जवाब मिला कि सर्व संबंधों से याद करो, दुनिया से जो संबंध है हद के संबंध छोड़कर आप बेहद के संबंध में चले जाओ तो आपकी एकरस अवस्था हो सकती है। ओम शांति।
मैं बुल्ढाणा से हूँ, मिनल। मैंने बाबा को खत लिखा था, मीठे बाबा, बाबा मैं मेरे आलस्यपन की वजह से मैं अब तक अमृत वेला नहीं करती थी, लेकिन इस योग भट्टी में मुझे अमृत वेले का महत्व समझ आया और यहाँ मैं खुशी से 3:30 बजे उठ रही हूँ। आगे भी ये जारी रखने के लिए मुझे शक्ति दो। बाबा आप हमेशा बच्चों से निस्सीम प्रेम करते हो, उनकी पालना करते हो, हमसे भी इसके आगे कोई चूक ना हो। मेरे मन में कुछ पुरानी बातें याद आती है, वो सब भूल जाए, मेरा मन शुद्ध हो जाए, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। आपकी बच्ची 10 मिनट के बाद बाबा ने मुझे आंसर दिया, मीठे बच्चे अगर तुमको मेरे से प्यार है, विश्वास है, तो अमृत वेला करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना आपकी अवस्था मजबूत नहीं हो सकती। कम से कम आधा घंटा करना शुरू करो। मन में पुरानी बातें रखने से आपका कोई फायदा है क्या? नहीं, नुकसान ही है। तो ऐसे सब पुरानी बातें यादें इस योग भट्टी में स्वाहा कर दो, भस्म कर दो और एकदम हल्के हो जाओ। देखो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा आपका बाबा। धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति। मैं डॉक्टर उषा खेड़ेकर बुल्ढाना से। वैसे ज्ञान में 10 साल से चल रही हूँ, अमृत वेला, मुरली और सेवा भी नियमित रूप से करती हूँ। और बाबा के प्रति मेरा इतना स्नेह है कि मेरा कोई प्रश्न ही नहीं है। और ऐसी बात है कि ये मेरा प्यार है, ये इसमें प्रश्न नहीं छुपा है। तो जो भी फीलिंग्स थी मेरी वो मैंने नोट डाउन करी है। अति प्राण प्यारे बाबा, प्यार भरी नमस्ते। जीवन में सबसे प्यारे आप ही हो मेरे लिए। मैं आत्मा हर पल आपको ही याद करना चाहती हूँ, करती हूँ। लौकिक व्यवहार में भी सदा मेरे साथ ही रहते हैं। ऐसा लगता है आप भी मुझे बहुत बहुत प्यार करते हो, इसलिए सदा साथ रहते हो। आपका प्यार पाकर मेरा मन सद्गदित होता है और आपकी याद आते ही आँखों में पानी भर आता है। ऐसा आप कितना प्यार करते हो, मेरी कोई समस्या अगर होती है तो वह मैं आपको देकर स्वयं भूल जाती हूँ, और जब समस्या मिट जाती है तो तब याद आता है यह काम तो बाबा ने कर दिया। और मैं बहुत ही प्यार से सद्गदित होती हूँ और मेरी आंखें फिर से भर आती है। ये मेरा प्रश्न नहीं था, ये मेरे फीलिंग्स थे बाबा को कि बाबा ये मेरा प्यार है और मैं आपको हर पल याद करती हूँ, हर कर्म करते हुए आपको याद करती हूँ। तो इसमें बाबा क्या कहते हैं मेरे बारे में। ऐसा मैंने 10 मिनट रुककर फिर वो फीलिंग्स मैंने महसूस की, तो मुझे ऐसा लगा बाबा कह रहे हैं बेटी तेरा सच्चा प्यार और लगन मुझे भी तेरी तरफ खींचती है, मेरा स्वरूप बनकर तुम बच्चों की सेवा करती हो, तुझ में मुझे सब देखते हैं, उनको तो शांति शक्ति देती हो, इसलिए मैं भी बंदा हूँ तेरे प्यार में। ओम शांति।
ओम शांति। अनुभव शेयर करना चाहती हूँ।
अनुभव नहीं, जो अभी अनुभव तो आपको सुनाने के लिए टाइम मिलेगा, शायद कल मिलेगा सुबह।
ओके
ओके। लेटर तो नहीं लिखा आपने कुछ?
सॉरी,
लेटर तो नहीं लिखा आपने बाबा को?
एक्चुअली क्वेश्चंस ही नहीं थे।
क्वेश्चन नहीं थे, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन भी कई तरह के होते हैं ना, जब कुछ करेंगे कहते हैं, जब हम जैसे आपको कह दें ना कि अभी आपको पैदल ही जाना है बॉम्बे यहाँ से, तो बॉम्बे कैसे जाएंगे? तो प्रश्न उठेंगे ना, किसे पूछूँ ये रास्ता किधर गया, पूछेंगे ना रास्ता। तो जब आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न स्वतः आते हैं, तो कई तरह के प्रश्न हैं। एक रास्ता है आपको आगे बढ़ने के लिए, उसको प्रश्न नहीं कहेंगे।
ओके।
हाँ, जैसे मान लीजिए आपको कहना है कि हमको, हम 8 घंटा बाबा को कैसे याद करें, तो ये प्रश्न नहीं है। अब उसके लिए आप ध्यान रखेंगे ना, कैसे हमको 8 घंटा, तो ये क्वेश्चन नहीं है, प्रश्न नहीं है। कोई ये ना सोचे कि ये प्रश्न पूछ रहे, नहीं, ये अपने को परिपक्व बनाने के लिए। बहुत अच्छा, चलिए अच्छा। क्या आप अभी एक लाइन में सुना सकते हैं अनुभव जो सुनाना है? दो लाइन में सुनाइए ज़्यादा, क्योंकि पता लगे।
मैं 1.5 साल से ज्ञान में हूँ, तो शुरू में जब मैं मेडिटेशन करती थी तो मेडिटेशन करते वक्त तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मेडिटेशन से उठने के बाद दिन भर वो अवस्था नहीं हो पाती थी। तो मैंने अशरीर स्थिति का अभ्यास बढ़ाया था, अभी मैं ऑलमोस्ट 45 मिनट अशरीर स्थिति का अभ्यास करती हूँ, तो उससे मुझे कॉन्सेंट्रेशन में बहुत हेल्प हुआ। और बीज रूप अवस्था में जो टिकना चाहिए हमें, अमृत वेला नुमाशाम या कभी भी, तो उसमें मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। तो एक ही रिक्वेस्ट है सबसे कि अशरीर स्थिति का अभ्यास थोड़ा सा सीरियसली कीजिए। थैंक यू।
कैसे करते हैं अशरीरी अवस्था का अभ्यास? कैसे अशरीर के लिए क्या करते हैं?
अशरीरी अवस्था का अभ्यास मैं बैठ के करती हूँ, कर्म करते हुए भी कभी कभी बीच में याद आता है। जब मेडिटेशन में बैठती हूँ नुमाशाम में, तो 6:30 से 7:30 बाबा की याद में, उससे पहले 1.5 घंटा अशरीर स्थिति, जैसे कि आप यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे BK मेडिटेशन म्यूज़िक, तो आपको बाबा का उसमें एक वीडियो आएगा, पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा, तो उसमें 1 मिनट कॉन्सेंट्रेट करना है, फिर आँखें बंद करके यहाँ पे विजुअलाइज करना है। ऐसे 1-1 मिनट या 2-2 मिनट का अगर आप करते हो तो उससे अशरीरी अवस्था आपकी बहुत अच्छी बनती है। और जो बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि एक रस अवस्था नहीं बनती, या फिर मुरली की धारणा हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है। थैंक यू।
ओम शांति। ज्ञान मार्ग के अंदर बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि सब कुछ सहज है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो जब से बाबा के ज्ञान में आए तो सब कुछ इजी ही लगता गया, चाहे व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, संबंध हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि शायद हम व्यक्ति को समझ नहीं पाते, उनकी भावनाएं क्या हैं, वो हमसे क्या आशाएं रखते हैं। और ये ना समझ होने के कारण सबको अपने जैसा अच्छा समझ लेते हैं, क्योंकि एक ही स्लोगन पक्का किया है कि बाबा के बच्चे सभी अच्छे, कभी किसी में अवगुण नज़र आता ही नहीं है। लेकिन इसी के चलते कई बार धोखे भी मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी बाबा से जब पूछती हूँ तो बाबा ये सब ऐसा क्यों होता है, मैंने तो हमेशा आपको आगे रख करके हर एक को आप जैसा ही समझ करके व्यवहार करा है, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करी है, फिर ये सब क्यों होता है? तो बाबा का एक ही अंदर से जवाब आता है बच्चे कि जैसा सोचेंगे वैसा मिलेगा। अगर आपकी सोच अच्छी है, बाबा आपके साथ है, तो हर समय बाबा आपका मददगार भी है, किसी ना किसी रूप में आपको आकर के बचा ही लेगा, बचाता ही रहता है और बचाता ही रहेगा, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओम शांति।
और किसी के पास, और किसी को बाबा ने बताया कुछ? ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ तो भले हर एक के पास इतना समय नहीं है कि हर एक सुना सके, तो इसको हमेशा आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करना है कि रोज़ हमें एक बार बाबा को लेटर लिखना है। रात को सोते समय भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सोते समय लिखेंगे तो क्या होगा, लिखते लिखते कहीं सो ही ना जाए, नहीं जब नींद आएगी तो नींद में मिक्स हो जाएगी। तो इसलिए जागृत अवस्था होनी चाहिए, है ना। दूसरी बात रही, बहन जी ने बताया कि आँखें बंद करके, तो यहाँ कोई भी प्रैक्टिस आँखें बंद करके नहीं करना है। यहाँ पहली बात ही बाबा बताते हैं, हमारी आँखें क्या हो, खुली हो, है ना। तो कई लोग सोचते हैं कि हमारी आँखें तो खुली रहती है तो सामने दिखाई देता है कुछ, लेकिन देखने में आया है कि अगर आपकी आँखें खुली है तो केवल सामने जो चीज़ें वही दिख रही हैं, लेकिन आँखें बंद होते ही कहाँ कहाँ बुद्धि चली जाती है ना। इसीलिए अर्जुन को भी क्या दिखाया है, अर्जुन को दिखाया ना जो कढ़ाई में तेल है ना, तेल में देखना था परछाई, जो ऊपर चक्र चल रहा है ना, चक्र को कहाँ देखना है, परछाई में, और वहाँ जो मछली है उसकी आँख में निशाना लगाना है, कहाँ देख के देखना है, कढ़ाई में। इसी प्रकार बाबा क्या कहते हैं, आपको किसे देखना है, जो सामने आत्माएं हैं ना, कोई भी जो आपके सम्मुख है उसे देखना है, क्या देखना है, आत्मा। लेकिन याद किसे करना है, याद किसे करना है, बाबा को, है ना। तो ये भी यदि हम याद रखें कि ये अर्जुन का जो एफर्ट है, अर्जुन का जो ये पुरुषार्थ है ना, तो इसलिए आंखें बंद नहीं करना, आंखें खुली भी हो। तो इसलिए रोज प्रतिदिन ये हम प्रैक्टिस करें कि बाबा को लेटर लिखें, 10 मिनट याद में रह के, फिर 10 मिनट बाबा की याद में रह के कैच करें। तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन करते करते परफेक्ट हो जाएंगे। आपको खुद लगेगा कि इसमें मिक्सचरटी है या राइट है, खुद महसूस होने लगेगा 8-10 दिन के अंदर ही। फिर तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि कनेक्शन आपका किससे है, बाबा से, और बाबा से आप वाचा से भी नहीं कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, मनसा, है ना। तो यदि इतनी आपकी मनसा क्लियर है, केवल बाबा की याद में है, तो स्वतः ही कहीं मिक्सचरटी नहीं होगी। लेकिन इसके लिए यही ध्यान रखना है कि हमारा मन बुद्धि जो है क्या शुद्ध, क्लीन, प्योर हो। तो इसीलिए कहते हैं कि बाबा की याद में स्थित हो जाएं। बाकी रही बात अमृत बेला भी, अमृत बेला भी इष्टांग कब होगा, इसके लिए भी कई बातें हैं कि अगर दिन में थोड़ा रेस्ट भी करना होता है, जैसे कहते हैं ना आजकल भी कि जिस समय आप दिन में रेस्ट करते हैं ना, उसके मिडल टाइम में आपकी नींद खुलती है। जैसे अगर 1 से 3 अगर आप दिन में रेस्ट करते हैं तो 2 बजे आपकी नींद खुलेगी, 2 से 4 अगर आप रेस्ट करते हैं तो 3 बजे आपकी नींद खुलेगी। तो रेस्ट ज़रूरी है थोड़ा, है ना, 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है ना। तो दिन में थोड़ा आराम करें, प्रॉपर नींद भी चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आप योग में बैठ तो जाएंगे, उसमें नींद ऐसी आएगी आपको लगेगा जैसे हम बीज रूप अवस्था में थे, पता ही नहीं चला। तो कई बार जो अमृत वेला पहला गीत बजता है और लास्ट गीत, उसका अंतर ही नहीं पता चलता है, इतनी अच्छी अवस्था होती है नहीं। तो इसीलिए बैलेंस भी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट, भोजन भी रात को हल्का हो, तब जा करके अमृत वेला इष्टांग हो और बाबा से इतना प्यार हो, अमृत बेले के महत्व को हम समझ सकें, है ना। क्योंकि बेला है ना, समय का भी बहुत असर पड़ता है। अमृत बेला जो है, अमृत बेला इसी को क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, है ना। जैसे ब्रह्म तत्व है ना, उस टाइप का वाइब्रेशंस होता है, समय होता है, उस समय, इसलिए बाबा को याद करना बहुत ईजी है, बहुत सहज है। तो इसीलिए अमृत वेला पर तो हमारा अटेंशन चाहिए। लेकिन अगर अमृत वेला किसी का पावरफुल नहीं हो रहा है तो भी चलाते रहो, आज नहीं तो कल नहीं परसों नहीं, फिर पावरफुल तो होगा ना। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि अगर आप योग में बैठते हो और योग नहीं लगता है तो ऐसा नहीं कि उठ के चले जाओ, नहीं बैठे रहो बस। योग नहीं लग रहा तो भी बैठे रहो, तो क्या है, आज नहीं लगेगा कल परसों, कभी तो लगेगा, है ना। आप बैठेंगे ही नहीं तो कहाँ से लगेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं मुरली भी सुनते हैं, मुरली सुनने में भी दिल नहीं लगती है, भले नहीं लगती लेकिन बैठे रहो सुनो। ऐसे ही मुरली पढ़ो भी, जैसे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, मुरली में दिल नहीं लग रहा लेकिन पढ़ो, पढ़ते जाओ रोज़ 8 पेज 10 पेज 4 पेज रोज पढ़ते रहो, तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट उसमें भी उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार रोज़ आप 10 मिनट निकालें, 10 मिनट अपनी समस्या बाबा को लिखें, बाबा को सम्मुख रख के फिर बाबा की याद में स्थित होकर 10 मिनट, फिर बाबा का क्या रिप्लाई है उसको कैच करें, इस प्रैक्टिस को बढ़ाना है। तो अभी हम सब 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, फिर आप 10 मिनट बाद यहाँ क्लास में आएंगे। तो 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं।
ओम शांति। अब थोड़ी देर में 11:05 के बाद भाई जी यहाँ आएंगे, आदरणीय भ्राता सूर्य भाई जी। और इसलिए जो भी अपने फ्रेंड्स होंगे बाहर, एक दूसरे को कॉल करके प्लीज़ जल्दी जल्दी उनको इनविटेशन दे दीजिए कि जल्दी आ जाए, क्योंकि सारा हॉल खाली लग रहा है। अभी पार्टी के जो भी बहनें होंगे वो अपने भाइयों जिज्ञासु जो भी पार्टी में आए हुए हैं उनको कम से कम एक कॉल कर दीजिएगा ताकि वो जल्दी पहुँचे, क्योंकि सारी सीटें खाली है। अभी यूट्यूब पर भी लाइव होगा, राजयोगी बीके सूरज भाई जी। और दूसरी सूचना ये है कि प्रश्न उत्तर का ही कार्यक्रम है, क्लास भी होगा प्रश्न उत्तर भी होगा, कि जिन भाई बहनों को सूरज भाई से प्रश्न पूछना हो वो अपना प्रश्न लिख कर, टोकरी कहाँ रखी, ये सामने यहाँ पर टोकरी रखी हुई है, यहाँ अपना प्रश्न डाल सकते हैं, अभी डाल सकते हैं, बाद में फिर सब प्रश्न सिलेक्ट करने में टाइम लगता है। आप अभी अपने मोटे अक्षरों में प्रश्न लिखेंगे, छोटे छोटे अक्षरों में नहीं, मोटे अक्षरों से अपने प्रश्न लिखेंगे, पढ़ने में आसानी हो ऐसे लिखेंगे और यहाँ टोकरी में रख देंगे।